Shame.
They both say. Okay. So, Surabhi, Surabhi Kundal. This is Surabhi Kunj in Navadvip town. And this is Gotundvip, the island of chanting.
Yes, now it is all right.
So, it is explained in Sri Navadvipa Mahatmya that Matideya Rishi, that he got benediction that he would be able to live for seven kalpas. So one kalpa is a day of Lord Brahma. What is a day of Lord Brahma? 4,320,000,000 times 2, 8,640,000,000 years. He was had to go there. He would live for 7 days as such. So while he was during the time of the ocean of devastation, as he was floating in this ocean, and he was now asking himself, cursing himself, why have I accepted this benediction? And just floating and floating, being tossed around in the waves. Then he was thrown into an island. And there on this island, there was a very, very beautiful white cow, Surabhi cow. There, he begged the cow to help resuscitate him by giving some of her milk. So the cow, Surabhi, then fed Markandeya Rishi her milk. And Markandeya Rishi, being resuscitated, then by mercy of the Lord, he saw the beauty of this Sri Navadvip Dham. He saw that at the time of devastation, that Sri Navadvip Dham, that it is not destroyed, that it is eternal. He saw it effulgent and resplendent. And there, taking shelter in Sri Navadvip Dham, there he performed his bhajan. This Gotundvip also is the place where Lord Nityananda, he went and he started his Namahat preaching. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he advented in this Kali Yuga and is explained that he had his internal reasons and his external reasons. His internal reasons were to taste the love of Srimati Radhika. Sri Radhaya Pranaya Mahima Kirishovana Yeva Swadyo Yena Bhutta Kirishovana Madhya Sokyam Chasyat Madhana Bhava Kirishoveti Lobhat. But he also had other reasons, and that was to give Vraj Prem. And how he gave it? Through the medium of Harinam Sankirtan. So this Sri Harinam Sankirtan, he deputed the responsibility of bringing Sri Harinam Sankirtan in Kali Yuga to Sri Nityananda Prabhu. And Sri Nityananda Prabhu, he established his headquarters in Sri Gotundvip in Surabhi Kunj. So, from there, it is explained that this Surabhi Kunj, that or Gotundvip, that where is it? That it is none different from Nandagam in Vrindavan. That there, Krishna, in the morning time, taking out the cows, it's explained. Kushumita Vanaraji. Shushmi Brinda Dvijakula Dustasara Sarin Mahiram Madhupatya Bhagaya Charayanaka Salapa Shupalapala Chukuja Vehinam Kusumita Vanaraji Shushmi Brinda. Then as Krishna going along with his brother Baladev and the cows, he calves, as he goes into the forest of Vrindavan, Kushumita Vanaraji Shushmi Brinda, that the forest of Vrindavan being signaled by Vrindadevi, then starts to welcome him in a very, very pleasant way. The creepers and the trees, they start to shower flowers on the path and make a very, very beautiful carpet. And simultaneously, they rain flowers on his head. And as he's entering, the birds, they're humming very, very sweetly for the pleasure of Krishna. And what are they humming?
Radhe, 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 Jai 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 Sitare, Radhe,
Radhe, Radhe, Jai 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 Sitare,
Radhe, 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 Jai 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 Sitare.
That the birds and the bees also, they're all humming. Radhe, 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 Radhe. Kushumita Banarji Shishmin Pinda Vijapula Busa Sarat Sarinmahinka Madhupati Vaga Tarayana Gaha Sahaka Shipalati Puja Deva. As he goes into the forest of Vrindavan, not only the birds, the bees, but also the creepers, they're welcoming him. And they're also swaying from side to side. That the Gavastamukha Venu Gita, that the cows and the calves are both seeing Krishna and hearing the sound of Krishna's Venu, his flute. Then their ears perk up like very big cups, and simultaneously hear the flute sound as it enters into their ears and into their hearts. Then their hearts melt, and milk is coming from the udders of the mother cows, and simultaneously tears are flowing from our eyes. The calves, underneath the mother, taking milk, they become stunned. Also, their ears, like little cups, they perk up, piyusa puta vita, they perk up like cups, and they start to drink the nectar, but not the milk, but now they're drinking the nectarian sound of Krishna's Venunat. As it enters into their ears and into their hearts, the calves, their hearts are like oceans of rain, absorbed in sakuras, and it swirls, and they become stunned, and tears are also flowing from their eyes. So, in this place, Surabhi Kunj, that stated that one who will do bhajan in this place, that then they will get this vision of Sri Nandakran, that it is none different. And Sri Navadvip, it has its speciality. That Vrindavan is a place of madhurya, sweetness, where madhurya is predominating. Though Daria is also present in Vrindavan, but madhurya is predominating. And in Sri Navadvip, magnanimity or Daria, that is predominating. So, even though one may come to Sri Vrindavan and perform bhajan for many, many lifetimes, still this Krishna praying is very difficult to achieve. But Srila Bhaktivinoda Thakur has explained that if one goes and engages in the process of chanting in this island, Sri Gurudwip, under the guidance of a bona fide Rasi Guru, then very easy, then Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Navadvip, then they give mercy. Why? Because in this Kali Yuga, we are bound to make offenses. That the conditioned soul in Kali Yuga cannot avoid making offenses. And when one is chanting holy name with offenses, then one will have to get the result of those offenses, and the goal, Krishna praying, is not attainable. But in Kali Yuga, the mercy of Sri Navadvip is that Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, that even if one is infested with offenses, but still in Sri Navadvip, then one can very easily get the result of Krishna praying. And what is the requirement? I think it was last year in Sri Navadvip, Srila Gurudev, he was speaking on this point, and I forget the word. That if one comes to Sri Navadvip, but with a mood, mood of kapatya, duplicity, then these offenses, they'll stick. What was the word? Like cement. Batra leg. That like cement, it will stick and very, very difficult to remove. But if one who comes to Sri Navadvip, taking shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, their patit pavan, then regardless of one's offenses, but by mercy of Gaudiya and bona fide Vaishnavas, then very easily that these offenses they can be removed and one can achieve the goal of Krishna prayer. So we're very fortunate that though we're not physically in Srinagrudan, but by the mercy of Srila Gurudev, then he can perform his inconceivable potencies and have us get that same benefit as being physically in Srinagrudan. Shri Gurudev ki jai, Shri Sarabhikrund ki jai, Shri Gurudev
ki jai. विद्यानगर संबंधे कुछ बोलो, 15 मिनट से बेशी नहीं। एकाने बोसे बोल ना, एकाने बोसे जा, बोसे बोल, हाँ, ना, क्यों कर बे, सुईये बोल बे,
विद्यानगर जो है वह विद्या का केंद्र, जहां पर सभी लोग विद्या का अध्ययन किया करते, नवोदय का वहां पर प्रज्वलन था, जो कि सभी लोग नवोदय शास्त्र पर पारदर्शी हुआ करते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले जो कि समस्त स्मृतियां, वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, जितने भी शास्त्र ग्रंथ है, वे सभी मूर्तिमान रूप में ब्रह्मलोक में अवस्थित हुआ करते। ये सभी नवतीर्थ धाम में उस विद्यानगर में आ करके श्री गौर सुंदर की महाप्रभु जी की आराधना की है, इसलिए उस स्थान को विद्यानगर कहा जाता है। वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता श्री महेश विशारद जी नवोदय का प्रचलन किया था और वहां नए शास्त्र पढ़ाते।
सार्वभौम वो मिथिला गए।
तो इस प्रकार से वहां विद्या का केंद्र माना जाता
है। पहले ये समझो, महेश विशारद और जगन्नाथ मिश्र ये सहपाठी थे नीलांबर चक्रवर्ती, जगन्नाथ मिश्र नीलांबर चक्रवर्ती, और वहां पर साधारण रूप से न्याय पढ़ाया जाता था, व्याकरण इत्यादि से पढ़ाए जाते थे। क्या हो गया? पास है तो थोड़ा सा बुद्धा सरकार देता है। कुछ दिनों के बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनके पुत्र पैदा हुए महेश विशारद के। बालकपन से ही उनकी बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी। उस समय नव्य न्याय मिथिला में पढ़ाया जाता था। ये वहां गए मिथिला में और नव्य न्याय पढ़ा। आज जब वहां से लौटे तो वहां के नव्य न्याय के ग्रंथों को अपने साथ लेकर नवद्वीप आ रहे थे विद्यानगर। किंतु मिथिला के जितने पंडित लोगों थे ने उन लोगों ने वो छीन लिए ग्रंथ, ग्रंथों को नहीं रहा। कहीं भी दूसरी जगह नव्य न्याय पढ़ाई नहीं होगी, केवल मिथिला में ही सबको आना पड़ेगा। तो ग्रंथ तो ले लिए किंतु बड़े श्रुतिधर थे। बस वहीं से जब बॉर्डर पास किया, बॉर्डर पास करके ही मिथिला का, और जो ही बंगाल में घुसे उन्होंने सारे ग्रंथों को स्मरण करके और लिख दिया। और तब फिर यहाँ विद्यानगर में आए और आकर के नव्य न्याय का प्रचलन इन्होंने किया। और महाप्रभु के पुरी जाने से पहले उम्र में अधिक बहुत थे इसलिए वो चले गए जगन्नाथ क्षेत्र। ठीक, हाँ।
अब हम लोग देखते हैं कि विद्यानगर में
अंडरस्टैंड
महाप्रभु जी की आराधना की है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी करनी है कि हमारे शास्त्र कितने हैं, वेद उपनिषद पुराण इतिहास। सबसे पहले हम वेदों को देखते हैं जो की
15 मिनट समय
जब अंदर वह चारों वेद हैं और उसके साथ साथ
संगीत
आयुर्वेद में औषधि विद्या, धनुर्वेद में अस्त्र विद्या, संगीत वेद में जो कि संगीत शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, संगीत चर्चा है और शिल्प कला स्थापत्य कला। तो ये चारों उपवेद और चारों जो मुख्य वेद है ऋग साम यजु अथर्व, इन चारों वेदों में चार चार विभाग है। एक मंत्र भाग, दूसरा ब्राह्मण भाग, तीसरा आरण्यक भाग, चौथा उपनिषद भाग। मंत्र भाग में देवता की स्तुति का वर्णन है, स्तुति और प्रार्थना है। ब्राह्मण भाग में विधि विधान नियम कानून यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन हुआ है, इसलिए उसे गद्य आकार में गद्य रूप से वर्णन हुआ है, इसलिए उसको ब्राह्मण भाग कहलाता है। तीसरा है आरण्यक भाग, पहले काल में पूर्व काल में ऋषि लोग ऋषियों को उपनयन आदि दिला करके गायों के साथ जंगल में भेज दिया करते थे। वहां जंगल में ढूंढते थे और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनको जो विद्या प्राप्त होती थी उसको आरण्यक भाग में वर्णन किया गया। इसी प्रकार जब की शिष्य लोग गुरु के समीप में बैठ करके जब भगवत उपासना का विषय श्रवण किया करते थे, शिक्षा लाभ करते थे, उनको उपनिषद कहा गया। उपर समीपे निषद इति उपनिषद, जो की भगवान के समीप में पहुंचा दे ऐसी विद्या का नाम है उपनिषद विद्या। तो ये जो उपनिषद है वेदों के एक एक शाखा करके ये उपनिषदें आई हैं। तो इनकी संख्या कुल मिला करके 1180 है, जो कि उनमें से मुख्य उपनिषदें इस केन कठोर प्रश्न मंडुक मंडुक तैतरीय ऐतरीय छांदोग्य वृदारण्य स्थितार्थ। इसी प्रकार गोपाल तापने राम तापने कृष्णोपनिषद प्रश्नोपनिषद और बहुत सारे उपनिषद किए। देवताओं के विषय में भगवान के विषय में जहाँ जहाँ विष्णु में वर्णन हुआ है इसी प्रकार उनके नामानुसार उपनिषदों का नाम ऐसे हुआ है। इस प्रकार वेदों के जो जटिल मीमांसा है उपनिषदों में, और उपनिषदों में जो तथ्य बड़े जटिल हुआ है उनका सार संकलन करते हुए बड़े छोटे छोटे शब्दों में श्री व्यास जी ने रचना की है, उसका नाम हुआ है वेदांत सूत्र या ब्रह्मसूत्र। अब ब्रह्मसूत्र के पश्चात श्री व्यास जी ने देखा कि वेदांत या ब्रह्मसूत्र के तात्पर्य लोग समझ नहीं सकेंगे, इसलिए प्रांजल संस्कृत भाषा में बड़े प्रांजल रूप से पुराणों की रचना की। उस समय उन्होंने 18 पुराण बनाए जो कि मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से हुआ, सात्विक राजसिक और तामसिक, तीनों स्वभाव के व्यक्ति के लिए तीनों प्रकार के पुराण बनाए। इस प्रकार 18 पुराण जो कि वेदों की तथा पुराणों में वर्णन होने के कारण और अति प्रांजल रूप से वर्णन होने के कारण पुराणा पुराण जो कि वेदों के पूरक हेतु उसको पुराण कहा गया। इसी प्रकार वेद पुराण और उपनिषद आया। इसके पश्चात श्री व्यास जी ने ग्रामीण कथाओं वाद कृष्ण मतेर गिरणीय ग्रामीण कथाओं के अनुवाद के द्वारा गपशप के रूप में महाभारत की रचना की, जिसमें श्रीमद भगवत गीता का भी वर्णन आया, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। इसलिए कि साधारण व्यक्ति भी समस्त कथाओं के द्वारा भगवान के उपदेश वाणी को समझ जाए और इसके द्वारा कृष्ण मतेर गिरणीय भगवान श्री कृष्ण में मन लग जाए। इसी कारण से ये सभी शास्त्र वर्णन किए गए। और इसके पश्चात नारद जी के उपदेश होने के पश्चात श्री व्यास जी ने समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ कर समाधि भाषा के रूप में श्रीमद् भागवत का प्रणय किया। तो इस प्रकार के सभी शास्त्र ग्रंथ आए हैं। सभी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण की आराधना हुई है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरिहि सर्वत्र गीयते। वेद रामायण पुराण महाभारत सभी शास्त्रों के आदि मध्य और अंत सर्वत्र भगवान श्री हरि का वर्णन हुआ है, उन्हीं की आराधना के विषय में वर्णन हुआ है। जितने भी जीव हैं सब उन्हीं से ही आए हुए हैं, हम उन्हीं के हैं, हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। जब हम उन्हीं से अलग हो जाते हैं तब हमारी दशा जैसे एक पेड़ से पत्ता निकल जाए और वो शुष्क के हवा में उड़ने लगे, उसकी कोई स्थिति नहीं होती है, वैसे हमारी दशा है। इसलिए वेदों ने कहा है द्वा सुवर्णा सजया समानम वृक्षम सजाते, जो कि एक असत्य का पीपल का वृक्ष है और उसकी शाखा पर दो पंछी बैठे हुए हैं। उनमें से एक पंछी जो है जीवात्मा रूपी पंछी जो कि उस पेड़ का फल खा रहा है, खाता हुआ वो सुखी नहीं दुखी हो रहा है, पेट भी नहीं भरता कमजोर बनता जाता है। दूसरा पंछी जो बैठा हुआ है वो देख देख करके हंस रहा है, निरन्ने न बले न भूया बिना खाए पिए मस्ती में है और भगवान है बड़ी शक्तिशाली है। वो कौन है? परमात्मा रूपी पंछी। और जीवात्मा रूपी पंछी जो है इस संसार का सुख दुख रूपी फल को भोग रहा है, इससे कभी कदापि सुखी नहीं होता है। इसलिए वेदों का कहना है जो कोई भूमा तत्सुखम नल्पे सुखम अस्ति, जो भूमा पुरुष है वही सुख स्वरूप है, संसार के अल्प वस्तु में कदापि सुख नहीं है। और भी वेदांत का कहना है कि अर्थात जो ब्रह्म जिज्ञासा उससे पहले ही वर्णन होता है, परीक्ष लोक न कर्म चीता निर्वेद माया नास्त प्रेत तुते, कि संसार की परीक्षा कर ले, मन मनता नहीं है, मन उछलता है, बोले ठीक है संसार की परीक्षा कर रहे हैं, देख रहे भली भांति परख ले, जब देखे कि संसार में कुछ है नहीं, असार है, अनित्य है, दुखमय है, ज्वालामय है, निर्वेद माया नष्ट करतु देह सर्वस नाते नाशी कुछ भी नहीं हूँ असार में तो उससे निर्वेद प्राप्त हो सब मायामय है सब होता है इसलिए उससे अलग खड़े जाए कहाँ तद्विक्य अनर्थम भगवान को यदि जानने की इच्छा है उन्हीं को जानना है तो इसलिए गुरु के पास ले जाए वहां गुरु के चरणों में आश्रय है और गुरु की सेवा करते हुए अपने हृदय मंदिर को पवित्र बनाए बिना गुरु की सेवा किए हृदय पवित्र नहीं होगा बिना पवित्र हुए भगवान की प्राप्ति भी नहीं संभव नहीं है इसलिए भगवान ने ध्रुव महाराज जी को दर्शन दिया दर्शन दे करके भी बोले कि हे हे ध्रुव महाराज ने नारद जी को दर्शन दे करके बोले कि हे नारद जाओ पहले साधु संतों की सेवा करो सबसे होया अदीर्घ यापी जाता मई दीड़ा मती भगवान ने दर्शन दिया और बोल रहे हैं कि बोले जाओ सबसे होया अदीर्घ यापी साधु संतों की गुरु की सेवा करो साधु संतों की सेवा करते करते मेरे बीच में सुदृढ़ मती होगी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और मन की चंचलता सब चली जाएगी तब मुझको तुम प्राप्त करो इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं जाओ साधु की सेवा करो बिना साधु संग किए बिना गुरु की सेवा किए बुद्धि कदापि स्थिर नहीं हो सकती मन कभी स्थिर नहीं होगा और भजन में मन नहीं लगेगा चाहे कितना ही भजन करो इसलिए यह जरूरी है दूसरी बात जहां पर विद्यानगर में विद्या की बातें आ गई तो ये सभी शास्त्र इस प्रकार से प्रकाशित किए परंतु भारतीय दर्शन में हम देखते हैं तीन आस्तिक दर्शन और छह आस्तिक दर्शन आए जो कि वेद को न मानने वाले ईश्वर को न मानने वाले और परलोक को न स्वीकार करने वाले ऐसे तीन नास्तिक दर्शन है जो कि बौद्ध जैन और चारवाक जैन और बौद्ध ये तीनों नास्तिक दर्शन वाले जो कि भगवान को नहीं मानते और ईश्वर नास्ते मेरा नास्ते पर लोग भी कुछ भी स्वीकार नहीं करते केवल खाओ पियो मोज करो भोज करो और शुद्धवाद शुद्ध से आया है शुद्ध में मिल जाएगा और दूसरा है तो जैन निर्वाण निर्वाणवाद है कि सुसाइड करके मर जाए तो ये सुसाइड करना ही निर्वाण इसी तरह से चारवाक लोगों का कहना है कि खाओ पियो मोज करो जैसे एक सज्जन ने एक समय बताया कि हमेशा ही वो मंदिर में जाया करते हैं वो एक बार पूछा कुछ साधु लोग बैठे मतलब भिक्षा मांगते हैं बैठे रहते उनसे पूछा कि बोलो भाई आप लोगों को मैं रोज दिन देखता हूँ कभी भी आप लोग भगवान की सेवा पूजा करते नहीं है करते क्या कभी कीर्तन करते भी नहीं देखा ना पूजा पाठ करते भी बोले कि हम लोग तो भगवान को मानते नहीं है हम लोग पूजा पाठ नहीं करते बोले अरे मंदिर में रहते नहीं करते बोले नहीं हम लोग तो चार बार वाले हैं बोले तब मंदिर में क्यों रहते हो बोले इसलिए कि यहाँ रहने से यहाँ खाना पीना मिल जाता है सभी लोग भिक्षा देते हैं पर यहाँ आराम से हम रहते हैं बोले अरे जिनके नाम से तुम्हें इतनी भिक्षा मिल रही है और इतना सारा खाना पीना मिल रहा है और उनको मन से क्या मिलेगा ये क्यों नहीं मानते तो इस तरह की बातें है कि ये चारवाक वाले जो की है खाओ पियो मोज करो रेत करके घी खाओ और कौन भरने के बाद में कौन किसको देखता है ये समाज को किया ये संस्कार वही है जो चार बार दर्शन इसी तरह से छह आस्तिक दर्शन का वर्णन होता है नए सांख्य पातन जल वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा जो कि गौतम का नए शास्त्र कणाद का ये पतंजलि का योग दर्शन और नए का ये गौतम का नए शास्त्र सांख्य का प्रकृति पुरुष का विवेचन और पूर्व मीमांसा जो कि पूजा पाठ इत्यादि जो कुछ ब्राह्मण लोग किया करते हैं जो 12 महीना में 13 पार्वण और घर में पूजा पाठ इत्यादि जितने प्रकार के होते हैं ये सारे पूर्व मीमांसा में इसमें भगवान की भी शुद्ध रूप से कोई आराधना की बातें नहीं की आई आई है केवल उत्तर मीमांसा में वेदांत दर्शन इसलिए श्री वेदांत दर्शन प्रकटित करते हुए यह मुझे मीमांसा की है, इसलिए वैद्य के वेदांत दर्शन का नाम उत्तर मीमांसा है। और उसमें भी एक अद्वैतवाद है जो कि सोहम वाले निरंकार निराकार
ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, वेदांत दर्शन पर भी शंकराचार्य, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी और निम्बादित्य का अपना भाष्य और विचार है। सभी अपने को वेदांती कहते हैं। अब इनमें से एक एक का विचार थोड़ा संक्षेप में बतलाओ। पहले शंकराचार्य का, तब विष्णु, मध्वाचार्य, रामानुज, मध्व, क्या क्या नाम है, उसके क्या विचार है?
अभी जैसे हम लोग देखते हैं चार वैष्णव संप्रदाय, जो कि श्री रामानुज संप्रदाय, श्री मध्व संप्रदाय और श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय और श्री निम्बार्क संप्रदाय और एक अद्वैतवाद के,
पहले अद्वैतवाद
और अद्वैतवाद के जो श्री शंकराचार्य जी ने, उन्होंने अद्वैतवाद की घोषणा की है और वेदांत का प्रचार किया, जिसमें की उन्होंने चार
महावाक्य,
चार महावाक्य स्थापन किए और एक सिद्धांत वाक्य जो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, ये उनके सिद्धांत वाक्य है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत छोटा है, मिथ्या है और जीव जो है ब्रह्म है। दूसरा
अद्वैत बात किसको कहते हैं?
अद्वैत
न द्वैत, क्या माने? दो नहीं, बस एक ही है, सो ब्रह्म, सो सोहम, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। और जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, ये शंकराचार्य का संक्षेप में विचार है, इसलिए इसको अद्वैतवाद कहते हैं।
इनके चार महावाक्य जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ज्ञान ही ब्रह्म है और तत्त्वमसि हम सभी वही है, हम ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ ब्रह्म है।
किंतु खूब सावधानी से कहना, सावधानी से कहना ये विषय को, क्यों? क्योंकि ये वेद के वाक्य हैं, किंतु महावाक्य नहीं है, महावाक्य ओम है केवल, और ये सब प्रादेशिक वाक्य हैं, किंतु शंकराचार्य जी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए महावाक्य बतला दिया, ओम को छिपा दिया। चलो, और फिर रामानुज का क्या विचार?
जैसे प्रतिबिंब
हुआ, अरे इतना मत पढ़ो, फिर देर बहुत देर, चार पांच दिन
लग,
कुछ इंटरेस्टिंग भाव से कहो, उमा से पूछ लो।
जैसे कि श्री रामानुज का उन्होंने अद्वैत वाद,
हाँ विशिष्ट अद्वैत किसको कहते हैं?
विशिष्ट अद्वैत जो कि विशेषण ब्रह्म का विवेचन किया है, ब्रह्म साकार सविशेष सच्चिदानंद विग्रह भगवान का रूप है और वे साकार स्वरूप में है, वैकुंठ नाम है, इस प्रकार उनका विवेचन किया है।
भक्ति के द्वारा उनको पाया जाता है
और भक्ति साधना के द्वारा उनको पाया जाता है।
विशिष्ट माने?
विशिष्ट यानी विशेष रूप से।
क्या चीज?
विशेष और विशेषण
युक्त जैसे ब्रह्म का,
इसको बतलाओ ना, जीव और जगत जो है ये ब्रह्म का विशेषण।
जीव क्या है? विशेषण है। और जीव जगत क्या है? विशेषण। इन दोनों से युक्त जो परब्रह्म है वो विशिष्ट है। किंतु अद्वैत क्यों है वह? ये तो दो आ गए, तो अद्वैत क्यों रहा? अभेद है, इसलिए अद्वैत কিন্তু বিশিষ্ট, বিশেষ যুগ, বিশেষ অদ্বৈত নেই হ্যাঁ, ইসলিয়ে বিশেষ অদ্বৈত, বিশিষ্ট অদ্বৈত। মধ্বাচার্য
भेद
अभेद दोनों रहने पर भी अभेद की कोई प्रतीति नहीं है, भेद की प्रतीति है। इसलिए यदि भेद नहीं माना जाएगा तो भक्ति नहीं होगी और फिर सब कुछ कर। इसलिए
उन्होंने पांच भेद स्वीकार किया,
क्या क्या?
जीव और ब्रह्म में भेद, जीव और जीव में भेद, जीव और जड़ में भेद, जड़ और जड़ में भेद,
जड़ और फिर ब्रह्म,
जड़ और ब्रह्म में भेद,
ये पांच
भेद उन्होंने बताया। तो ये नित्य है और हमेशा ही रहेगा, और इसी के साथ भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की सेवा करते, इसलिए उन्होंने भक्तिवाद का प्रचार किया।
विष्णु स्वामी
और विष्णु स्वामी जी ने जो कि शुद्ध द्वैतवाद का प्रचार किया है, शुद्ध अद्वैतवाद,
मैंने इसको अलग अलग संधि विच्छेद करके बोलो तो शुद्ध
अद्वैतवाद।
हाँ, क्यों अद्वैत और क्यों शुद्ध?
शुद्ध अद्वैत, अद्वैत ब्रह्म का अंश है जीव, और ब्रह्म की शक्ति से, ब्रह्म से ये जगत बना है, जितना जो कुछ है सब ब्रह्म का ही परिणाम है, इसलिए उन्होंने सब कुछ मिलाकर के शुद्ध अद्वैतवाद कहा है।
नहीं, इसमें और समझो क्या हुआ, क्या है, तुम तो बोल छो जिसे ना शुद्ध अवस्था में भी ब्रह्म, प्राकृत अवस्था में, बद्ध अवस्था में तो ये जगत और जीव है, भेद ही है। मुक्त अवस्था में भी, ब्रह्म के शुद्ध अवस्था में भी, अप्राकृत अवस्था में भी भेद है। वहां पर हनुमान, गरुड़, जय विजय, नारद, गोप, गोपी इत्यादि शुद्ध रूप में वहां पर भगवान की सेवा करते हैं, वहां पर भी दोनों सब एक नहीं है। वहां पर भी उपास्य, उपासक और उपासना तीनों चीजें हैं शुद्ध रूप में, और यहाँ पर है बद्ध रूप में, प्राकृत रूप में। इसलिए शुद्ध अद्वैत, अद्वैत एक ही के अंतर्गत में एक शक्ति से सभी कुछ ये हुआ है, भगवान की शक्ति से, शक्ति शक्ति मतो रभेद। इसलिए अद्वै ज्ञान पर तत्व, किंतु अप्राकृत जगत में भी उनमें भी के हाँ, ये सभी लोग रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बादित सभी, महाप्रभु जी ने पीछे से बतलाया, तो चल और आगे बढ़ो। पांच मिनट में और समाप्त करना।
शुद्ध द्वैत, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैत और अद्वैत, द्वैत अद्वैतवाद, तो द्वैत है और अद्वैत है, भेद भी है और अभेद भी है, इस तरह से भेदाभेदवाद अथवा शुद्ध द्वैत, द्वैत अद्वैतवाद, इस तरह से उन्होंने विवेचन किया। इसमें क्या है, चारों आचार्य के पृथक,
उन लोगों ने निम्बादित्य ने जो भेद और अभेद बतलाया किस में बतलाया,
जीव और जगत और ब्रह्म तीनों में भेद भी है और अभेद भी है।
चलो,
इसलिए उनके स्वाभाविक भेदाभेदवाद का चिंतन, भेदाभेदवाद
वो वस्तु वस्तु से मानते हैं,
वस्तु, इसलिए जितने भी आचार्य हुए सभी वस्तु परिणाम वाली, परंतु इनके उपासक देवता तो सामान्य रूप से पृथक पृथक रूप में देखे जाते हैं, जैसे कि श्री रामानुज स्वामी ने लक्ष्मी नारायण की उपासना करी, इसी तरह से श्रीमद मध्वाचार्य जी ने बाल गोपाल कृष्ण की उपासना करी, और उन्हें नारायण उपासना की।
बाल गोपाल की उपासना ही नारायण की उपासना समझते हैं।
और श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में नृसिंह देव की उपासना और संप्रदाय में जो कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण की द्वारकेश कृष्ण की उपासना है, इसी प्रकार से चार प्रकार की उपासना और बार बार में पृथक पृथक रूप से की।
ये सब का मूल स्थान विद्यानगर है, गौत प्रेमानंद। बहुत अच्छा इन ब्रीफ, बहुत सुंदर हुआ। इतना समय नवद्वीप में नहीं मिलेगा व्याख्या करने के लिए। नोट कर रही है, नोट कर रही है, ये बोलना होगा, ये सब कहेंगे, वेदांत पर बोलना होगा। बहुत ठीक, बोल सकेगी, बोल सकेगी,
बोल सकेगी। When Mahaprabhu appeared, now before Mahaprabhu appeared, they all came in their personified form from Brahmalok and worshipped Mahaprabhu there, which is another big dham. Therefore, it's called Vidyanagar.
Oh, you should check what he's telling. Go on.
So, it's described there in the birthplace of Sri Sarvabhaum Bhattacharya and his father, Sri Mahesh Visvarat.
What?
Visvarat.
Who Visvarat?
Mahesh Prasad, the father of Sri Sarvabhaum Bhattacharya. Sri Sarvabhaum Bhattacharya, he was the reincarnation of Brihaspati. And he went to Mathila. And there he studied Nadya Nyaya.
Who went to Mathila?
Huh?
Who went to Mathila?
Sri Sarvabhaum Bhattacharya.
Yes.
And there, he made a new type of Nyaya and studied there and wrote many books with the pundits of the area. He studied there.
Yeah.
So that time all the pundits became envious of him. So they stole all his books.
Oh, please sit down. Otherwise, I will have. No, you should sit. You will make so many wrong things. It will take time. I told you, do not down. You should note down. Again, you should correct.
So prior to the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, there in Vidyanagar, was born the father of Sarvabhaum Bhattacharya. His name was Mahesh Visharad. His son is Sarvabhaum Bhattacharya. Mahesh Visharad was a school friend of Sri Nilambar Chakravarti,
yes,
who is the father of Sachivatra. Therefore, because of his relationship of his father with the grandfather of Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhaum Bhattacharya had some Vatsalian mood towards Chaitanya Mahaprabhu when he met him and wanted to help him in grief. So, the son of Mahesh Visarada, Sarvabhaum Bhattacharya, from his childhood, he had very Tikshan Buddhi, sharp and penetrating intelligence to understand any subject matter. And he left Calgary and went to Mithila, because there was like university of the Nyaya. Already he had studied Nyaya logic, but there was a logical Namya Nyaya, a new type of logic, very, very powerful. So he went there to study, and he wanted to take the Shastras of the school of Namya Nyaya back to Namadri. But the Brahmins who were there, they thought, no, if the books of our philosophy will go anywhere else, then the people of the world, they will not come here to study, and our prestige will go down.
So we will not allow any of our books of Navinyaya to leave this place so that we will have the monopoly of this type of education. So, Sarvabhauma Bhattacharya, they would not allow him to take their books with him. He was so intelligent, he memorized everything. He memorized everything, and then he came back to Vidyananda and wrote down the Shastras from his own memory. Then, Sarvabhauma Bhattacharya, he told this Navinyaya to his disciples. And then, before the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya, he was thinking, he's Brihaspati, and he knew that Chaitanya Mahaprabhu would appear. So, Srila Bhaktivinoda Thakur, in Navinyaya Navinyaya, he describes that he thought, if my Lord is really coming here, then he will know how to find me. So I will leave this place and go to Puri, and he will have to find me there. So Sarvabhauma Bhattacharya, before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, went to Jagannath Puri.
Before the birth of Chaitanya Mahaprabhu, you can tell.
Yes.
You told? Very good.
Before his birth, so before the birth of Chaitanya Mahaprabhu, he left and went to Jagannath Puri, but his disciples were there and teaching in that same place. So Nimai Pandit, he would come there and he did his Vidya Vilas, his pastimes of knowledge pastimes as a logician, and he would very much enjoy his pastimes of cutting all the arguments of the disciples of Sarvabhauma Bhattacharya. So, Jetu Maharaj was explaining that here in Vidyananda, all the Vedas are worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu. So when we say Veda, what does it mean? First of all, Sruti, the original Vedas, they are four. Sama Veda, Rig Veda, Yama Veda, and Atharva Veda. Then there are four Upa Vedas. That is Dhamma Veda, the knowledge of weapons. Ayurveda, the knowledge of medicine. Sangeet Vidya, knowledge of music. And Supakala Vidya, this is knowledge of architecture, arts and architecture, sculpture.
64 or 60 kind of arts all.
So they are called the four Upavedas. And there are six Vedantas of Apana Vidya, including Jakaran, Brahma, and Chanda, Jyotish, Kalpa, Shiksha. Six Vedantas. So the Vedas themselves are divided also into four parts. Brahman section, Aranyaka section, Upanishad, and Mantra. So all these together compile Veda. Then, corollary literatures to the Vedas are the Puranas. The Puranas are being considered the fifth Veda because they complete the knowledge of the Vedas. Vyasadeva also gave Mahabharata for the education of the common people who were not qualified to study Veda. Karma Sreyas, three vices, Sutra Dvija Bandhunam, Karma Sreyas, but those who are not qualified to study the Vedas, and those who were bewildered by karma, for them he gave Mahabharata, and in that he gave Gita Upanishad. Then, finally, Sri Vyasadeva, he gave Vedanta. So here in Vidyanagar, we see that Narada, he empowered Valmiki to manifest Ramayana there. Here in this place, Dhanvantari, he manifested the knowledge of medicine. Here in this place, Vishwamitra Rishi, he received the Dhanurveda, archery. And here in this place, Tene Brahma Ridaya Adi Kavaye Muyanti Yatsuraya, Sri Krishna, he empowered the knowledge of the Vedas into the heart of Brahmaji, Chakramukh Brahma. And Brahmaji then manifested four Vedas, and from him also manifested from his tongue Sarasvati, the goddess of learning. So, in this place, all the rishis, of the Vedic rishis, they came there and they have propagated their various philosophies. So, there are three types of Gnostic philosophy. That means atheistic philosophy. The philosophy of Charanak Muni, what is that? Eat, drink, and be merry because soon you will die and then there's nothing. This is Charanak Darshan. Then Jain Darshan of the Jain Dharma, Jain religion, and Bodha Dharma, the philosophy of Buddhism, this is Shunyavad, Buddhism. So these three types of darshan philosophy, there are Gnostic, atheistic darshan. Then there are six types of Astic darshan. Astic means they accept Vedshastra. The other three darshans do not accept Vedshastra. But these six accept Vedshastra. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said that they only accept by mouth. Very much money. They accept this base only by their mouth. Because five of these darshans only give lip service to the Vedas. Because they don't accept, in the true sense, the theistic conception of the Supreme Personality Godhead. The first rishi, his name is Gautam, and he gave Nyaya Shastra, logic. The next rishi is the Kanak. Kanak gave Vaisheshi. Vaisheshi, philosophy is development of Nyaya, wherein the world is considered to be composed of atoms. Then, Kapil Muni. This Kapil Dev is not Devahuti Putra, the son of Devahuti. This is another philosopher. He gave philosophy of Sankhya, in which there's a deliberation on the relationship between Purush and Prakriti. The next rishi is Patanjali. Patanjali gave Yoga Sutra. And then in Yoga Sutra, he explained how to overcome all types of flesh and attain mukti, and how the Atma will merge into Paramatma. Then the next rishi was Jainini Rishi. Jainini Rishi's philosophy is called Paramamimamsa. Paramamimamsa is also known as Karmakanda. There he explained that karma is eternal, and therefore one should try to perform Yajna of the Vedas in such a way that he will always enjoy in the heavenly planets. So then, after Jainini Rishi, the final philosophy, the sixth philosophy, is called the Uttara Mimamsa. The later, or more modern, Mimamsa, or deliberation of the Vedas, that is manifested by Srila Vyasadeva, and that is called Vedanta. Vedanta, the end of the Vedas. This Vedanta is a fully theistic philosophy, glorifying the Supreme Personality of Godhead. The other five philosophies, they take evidence from the Veda, but they think, they explain that the truth can be understood by application of Nyaya, or logic. But actually, Supreme Personality of Godhead is beyond all logic. Tarka Pratishta. The absolute truth cannot be discovered by logic and reason and argument. And also, the Karma Mimamsa philosophy accepts that there is God. But God is under the control of karma. So though he accepts Ishvara, this Ishvara in the true sense, not really Ishvara. So of these five, though they are called the Astic Darshan because they accept the Vedas, really in the core of the heart, they are atheistic. They don't accept the Achintya Tattva, Advaya Gyan, Paratattva, Supreme Personality of Godhead. So actual philosophy, the end or the conclusion of the Vedas, has been given by Srila Vyasadeva in Vedanta. After Vyasadeva, manifested Vedanta, many great personalities appeared in his world and wrote their commentaries. Of these, five commentaries are prominent. First, Sripad Shankar Acharya gave his philosophy of Advaitavad. What is Advaitavad? Brahma Satya Jagan Mithya. Jiva, Brahma Jiva Aikya Na Paraha. Brahma is true. This world is false. And the Jiva and Brahma, they are one. Sri Shankaracharya has taken four statements from the Vedas. These are the Pradeshik Bhakya means that they are statements, they have a context. They cannot stand on their own as being the giving the conclusion. So in this Pradeshik Bhakya, these contextual statements, Shankaracharya has selected four of them, and he has called them the Mahabhakya of the Vedas. So Srila Gurudev explained that we should not minimize these four statements of the Vedas, because they're Vedic statements. Only Shankaracharya, he used the technique to bewilder the common people, to make mohita, to bewilder the common people by explaining that these four Pradeshic Bhaktya, four contextual statements are Mahabhaktya, but actually they are not. These four statements are Sarvam Kaulidam Brahma. Everything is Brahma. Then
not Brahma, Brahma.
Brahma. Then Pratyana Brahma. What is Brahma? Only knowledge. Knowledge is the absolute truth. Then Tattvam Asi. You are that Brahma. And Aham Brahmasmi. You are Brahma, Tattvam Asi, and Aham Brahmasmi. I am also that absolute truth. So these are tradition Pratya, contextual statements. But actually, in the Vedas, there's only one Mahavakya. What is the one Mahavakya? Om. Om. Ajananto Namachit Vivittam. Mahaste Vishnu Shumatim Vatamahe Om Tat Sat. What is Om? Om is Harinam. The name of the Supreme Personality of Godhead. This is Harinam. This is the Mahavakya of all Veda. So, this is called the Advaita, Kevadvaita Vada of Shankaracharya, means exclusive monism. Everything is one. So, the Vedas have discussed monism. Ekameva Dvitiyam, the absolute truth is one, without a second. But what is, actually this means the absolute truth has oneness. There are two types of oneness. Srila Bhaktivinoda Thakur explains. One is called Vastu Ekatva, and one is called Dharma Ekatva. So Shankaracharya's philosophy is Vastu Ekatva. There is only one substance, and that is Brahma. Everything is the same substance. But when the Vedas speak of oneness, Ekatva, they speak of what? Dharma Ekatva, one nature. So Krishna explained in Gita, Etat Jnana Upasritya Manasa Dharma Agataha. When you become established in Jnana knowledge, then you attain Manasa Dharma, the same Dharma as me. In other words, Bhagavan is Satyananda, Jeev is Satyananda. Therefore, the oneness of the Vedas refers to the Dharma Ekatva, oneness of nature. So, this Kevadvaita Vada of Shankaracharya is quite incorrect. In order to uproot his philosophy, the next Acharya to him was Ramanuja Acharya. Ramanuja Acharya commented on Vedanta Sutra, and his philosophy is called Vishishtadvaita Vada. The philosophy of Vishishta Advaita. What does it mean? Everything is Advaita, one, but in what way? Bhagavan is like Vishesha, that means a noun. And the Jiva and Jagat, they are like Vishesha, the adjective. Just for example, if we can say there is a house, this house is a big red house. So house is the noun, and big and red are the adjectives, qualifying that now. So in the same way, he said, yes, everything is one. Brahma, Jagat, and Jiva, they are one. But Brahma is supreme truth. He is like the now. And the Jiva and the Jagat, they are like the adjectives qualifying that now. In this sense, they are one. This is called Vishishtadvaitavada. Then after Brahma Vidyacharya came, Sri Madhvacharya appeared. Sri Madhvacharya gave the philosophy, you can see, always like this. Dvaitavada. Dvaita means made. Difference. What is that? Indian philosophy explains that there are five types of made are eternal. Five types of difference, they are eternal. That there is an eternal difference between Brahma and Jeev, between Brahma and Jag, the Jagat, the material world. The difference, eternal difference between Jeev and Jeev, and also between Jeev and Jag. Jeev and Jag. So these are five types of difference, and they are eternal. So Madhvacharya established this on the basis of through his commentary on Vedanta Sutra. Then Vishnuswami. Vishnuswami's philosophy is called Shuddha Advaita, pure monism. What does it mean? It means that the relationship, which there is an eternal difference in the Shuddha Avastha. In the pure condition, in the transcendental world, in the Shuddha Avastha, the pure condition, there is oneness there, but within that oneness, there is some bhed, some difference. The eternal difference is between Upasya, the object of worship, Upasaka, the performer of worship, and the Upasana, the worship itself. These are eternal reality. So his philosophy is called Shuddha Advaita, or purified monism. Then the philosophy of Nimbadita. Nimbadita, this philosophy is called Dvaita Advaita, simultaneous oneness and difference. This is not the same as the Achintya Bhed Tattva of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Why? The Bhed Bhed of Sri Nimbadita is called Swabhavik Veda Bhed, natural oneness and difference. For example, in your body is one, but your hand is different from your feet is different from your nose. So even though there is difference, yet your hand is your body, your nose is your body, your feet is your body. This is called Swabhavik Dvaita Dvaita, natural oneness and difference. Whereas Sri Chaitanya Mahaprabhu, he synthesized all the philosophies of the Acharyas, and whatever is lacking in their philosophy, he also perfected that and gave the philosophy of Achintya Bheda Bheda Tattva. Here, the oneness and difference between Bhagavan and his Shakti is Achintya. It cannot be understood by the material mind, but only by those who Veda Buddhi Gamya. They take shelter of the instructions given in the Vedas. So, here, the four Acharyas, four Sampradaya Acharyas, they have given their four philosophies, and they have one thing in common. That is that their philosophy is called Vastu Parinama Vaya, the philosophy of transformation of Vastu, Vastava Vastu. There is one truth, one reality, that is Bhagavan himself. And Bhagavan himself undergoes Parinam, or transformation. And that Vastu transforms, Vastu Parinama Vaya transforms and becomes Jeev and Jagat. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said no. Why? Because all Vedas give the conclusion that Vikara Dhyashunya, the Param Tattva Swayam Bhagavan, is Vikashunya. He has no transformations in him. But Shakti Shakti Matayo Abhay, he is no different from his potency, and it is the Shakti of Bhagavan which transforms and becomes Jeev Jagat and everything in existence. Therefore, the four acharyas have given Vastu Parinama Vaya. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Bheda Bheda Tattva, is the philosophy of Shakti Parinama Vaya.
Difference of the deities. Thank you.
सब कुछ वहीं पर महाप्रभु जी कब आए कब पहले क्रिएशन के अनादि सब पढ़ाया जाता सब विद्या का केंद्र होने से जब सब विद्या है तो ये भी विद्या होगी आप लोगों ने विद्यानगर के संबंध में सुना इन सब का किंतु मूल तत्व है भक्ति रूपी विद्या सब विद्या मति विद्या कृष्ण के प्रति प्रीति हो भक्ति हो यही सब शास्त्रों का तात्पर्य है इसलिए चैतन्य महाप्रभु विद्या के मूर्तिमान विग्रह सार्वभौम भट्टाचार्य राय रामानंद सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सबको ये सब शिक्षा दी उसका मूल स्थान भी विद्यानगर में ही समझो वहां से हम लोग जन्नू द्वीप में आए वहां पर जन्नू मणि ऋषि तपस्या कर रहे थे ये प्राय द्वापर युग की बात है और उनके पुत्र 60,000 घोड़े सगर महाराज सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र वे लोग घोड़े के पीछे पीछे थे अश्वमेध यज्ञ हो रहा था उस समय कपिल देव जी के आश्रम में जाने पर इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया और कपिल देव के सगर के पुत्रों ने समझा जी इसी ने घोड़ा ये जो ऋषि बैठा हुआ है कपिल इसने चुराया है इसलिए अपमान करने लगे और मारने लगे उसमें कपिल देव जी ने आंख खोला और खोलते ही वो भस्म होकर के उनको उद्धार करने के लिए बहुत चेष्टा हुई, सगर चले गए, उनके पुत्रांश मान गए, उनके पुत्र दिलीप गए, ऐसे करते 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 कुछ पीढ़ी के बाद में भगीरथ जी हुए और उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा के कमंडलु से गंगा को निकाला और वहां से फिर शंकर की जटा में उलझ गई। फिर वहां से शंकर को प्रसन्न करके ले करके आ रहे थे, ले जा रहे थे कपिल देव के आश्रम में सागर में, और यहीं पर नवद्वीप में जहाँ हम कह रहे हैं जहनुद्वीप में जहनु ऋषि बैठे हुए थे, उनका कुशा आश्रम और सब कुछ बहा करके जब ले गई तो उन्होंने चुल्लू लेकर के अब छोड़े नहीं, तो फिर उन्होंने तपस्या करके उनको प्रसन्न की तो अपने जान काट करके चीर करके वहां से गंगा को निकाल दिया तो उनकी पुत्री बन गई, इसलिए उनको जाह्नवा देवी कहते हैं। ये सब बातें वहां हुई और भी बहुत सी चीजें हैं। वहां पर भीष्म पितामह आए थे, गंगा जी के पुत्र हैं, इसलिए जनु ऋषि ने उनको नीति धर्म तत्व की शिक्षा दी। अभी भीष्म टिल्ला वहां पर है और भी बहुत सी चीजें हैं। इसके बाद में हम संक्षेप में चलते हैं मुद्रुम द्वीप में, मामगाछी मुद्रुम द्वीप में। वहां पर मुद्रुम द्वीप आनंद को देने वाला एक द्रुम माने वृक्ष बट वृक्ष है। रामचंद्र जी त्रेता युग में पिता का आदेश पालन करने के लिए लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण और प्रिया सीता जी को लेकर के घूमते घामते प्रयाग से इधर में आए, गंगा के तट पर जब आए तो देखा है रम्य बड़ा स्थान, सुंदर है, कोयल कुहक रही है और सुंदर सुंदर आम्र कानन है, बट का वृक्ष है, जमुना गंगा जी यहाँ पर बह रही हैं। तो वो कुछ मुस्कुराने लगे। वहां पर उन्होंने कुटी बनाई लक्ष्मण जी ने और सीता जी और मिल करके वहां पर कुछ दिन रहे। एक दिन रामचंद्र मुस्कुराने लगे, सीता जी ने कहा जे प्रियतम आप किस लिए मुस्कुरा रहे हैं? तो वो पहले तो बोलने में सोचकर आते, फिर बार बार अनुरोध करने पर बोले ये हमारा प्रिय स्थान है, अभी मैं लौट करके 14 वर्ष वनवास पूरा करके लौटूंगा और फिर राज्य ले करके तुमको वन में मैं भेज दूंगा, तुम वाल्मीकि आश्रम में रह करके हमारे विरह में तड़फेगी और मैं घर में रह करके तुम्हारे लिए तड़फूंगा और सोने की सीता बना करके तुम्हारी पूजा करूंगा और उस समय में हमारी माता कौन है, कौशल्या अदिति सबको मिला करके ये है, ये भी उसमें रहेंगी। इसके बाद में मैं तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए जो तुमको वन में भेजा है, मैं इसी स्थान पर कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊंगा, राधा जी का भाव और कांति लेकर। किस लिए आऊंगा? प्रेम के दो पहलू हैं, एक संयोग और एक वियोग। संयोग में संयोग के प्रेम को संयोग प्रेम कहते हैं, संभोग कहते हैं, और जहां पर मिलन नहीं है विरह है इसको विप्रलम्भ या वियोग रस कहते हैं, विप्रलम्भ रस कहते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि मिलन में अधिक आनंद है और सभी लोग मिलन कराना चाहते हैं राधिका का, किंतु तटस्थ होने पर तटस्थ रूप में जब विचार करते हैं तो संभोग से भी मिलन से भी कोटि गुण अधिक आनंद और लाभ विप्रलम्ब है। बिना विप्रलम्ब के संभोग रथ की पुष्टि नहीं होती, ये किंतु तटस्थ विचार से। मिलन के विचार से वृंदावन में कोई भी ऐसी सखी है जो चाहती है कि राधा कृष्ण का या चंद्रावली से कृष्ण का मिलन न हो, हम लोग चाहते हैं जो राधा कृष्ण का मिलन न हो, वियोगी रहे और बेस्ट बेस्ट उसमें दोनों को खूब आनंद मिले, ऐसा नहीं। रूप गोस्वामी ने भी ऐसा किया, श्रीमद भागवत के विरह को नहीं सह सके, इसलिए उन्होंने विदग्ध माधव ललित माधव नाटक किया और जितनी सखियां थी उनको वहां की सत्यभाम द्वारका की महिषियों के रूप में बदल दिया और उनमें मिलन करा करके विवाह करा दिया, तब वो खुश हुए, नहीं तो ब्रज में बड़े दुखी थे। और उन्होंने ये भी बताया कि कृष्ण अंत में लौट आए मथुरा से और द्वारका से लौट करके आए, वृंदावन में रहे और सभी गोपियों को गोप को ब्रजवासियों को लेकर के अंतर ध्यान। तो विप्रलंब के बिना आनंद की अनुभूति संभोग की पुष्टि नहीं होती, इसलिए मैं तुमको प्रत्याग कर दूंगा और तुम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहेगी और मैं सीता की मूर्ति तुम्हारी मूर्ति सोने की मूर्ति बना करके मैं पूजा करूंगा, विरह रस में सब समय डूबा रहूंगा। और फिर कलयुग के प्रथम संध्या में मैं गौरांग रूप में आऊंगा और तुम्हारा ऋण उतारने के लिए मैं वन में चला जाऊंगा संन्यास लेकर के, और तुम विष्णु प्रिया होगी तुमको वहां पर छोड़ देंगे और मेरी मैया जसोदा जी ये होंगी सची, वो अपनी बहू को गोदी में लेकर के रोएगी और उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा करेगी। सीता जी कांप गई, ऐसा क्यों करोगे, इसलिए कि ऋण चुकाना है और प्रेम का दो पहलू की जगत में शिक्षा देना है, जो ये विप्रलंब संभोग ये क्या चीज है, भगवत रस है, कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु है, किस प्रकार से सिंधु है, और तुम जो सीता है राधा के रूप में तुम महाभाव स्वरूपा हो, ये जगत कैसे जानेंगे। इसलिए दोनों के भावों को जगत में प्रचार करने के लिए मैं सचिनंदन गौर हरि के रूप में हूंगा और इस सब विषय का मैं प्रचार करूंगा जो जगत के लोग भी जान सके। आज यदि महाप्रभु नहीं आते, यदि कृष्ण ही राम के रूप में नहीं आते और सीता का प्रत्याग नहीं करते तो भी प्रलंब रस नहीं होता। यदि द्वापर युग में कृष्ण गोपियों को छोड़कर के स्वयं चले गए मथुरा द्वारका निष्ठुरता पूर्वक, इसलिए सचिनंदन के रूप में इस बार स्वयं ही संन्यास लेकर के गए और गोपियों को विष्णु प्रिया को घर में रख करके गए। और विष्णु प्रिया क्या करती हैं, सोने के सीता के बदले कलयुग है ना, इसलिए निम्बकाष्ठ की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करती है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार किया वहां पर। और एक लीला है, महाप्रभु के एक भक्त थे, उनका नाम था सारंग, वे सारंग वह वृद्ध हो गए, वे मामगाछी में रहते थे। तो महाप्रभु जी ने एक दिन कहा, आए वहां देखा जी पूजा में लगे हुए हैं, कहा अरे तुम पूजा में खुज लगे रहते हो, हरिनाम इत्यादि का समय नहीं मिलता है, अब शिष्य एक कर लो। ये शिष्य तो योग्य हमको कोई मिलता ही नहीं है, कोई नहीं मिलता तो नहीं हमको योग्य नहीं मिलता, इसलिए शिष्य नहीं करते। और ये शास्त्र की बात है, योग्य शिष्य न रहे तो मत करो। अब कल युग में हम विगी संन्यास विगी इनिशिएशन टू अनक्वालिफाइड पर्सन एंड दैट इज वाई सो मेनी प्रॉब्लम्स कम्स समटाइम्स डिसाइपल और सन्यासी रिनाउंस आवर order sannyasis, they don't want to follow Gurudev, very big problem, but yet Gurudev gives them to make qualified. So we should try to know all these things. So kya batla raha tha, sarang murari, to unhone kaha acha ek baat karo, तुम किसी को भी तुम शिष्य बना सकता है और वो योग्य बन जाएगा, जो ठीक है। दूसरे दिन भोर में उठे और गंगा स्नान करने के लिए गए। उन्होंने कहा जैसे अच्छा, महाप्रभु जी ने कहा जिसको पहले देखो उसी को हरिनाम दो। उन्होंने देखा एक मुर्दा बहा हुआ चला जा रहा है, सौ वो मरे हुए आदमी को पकड़ करके खींच करके ले आए और कान में गोपाल मंत्र दे दिया और महामंत्र देते ही जीवित हो गया। तो कृष्ण, अरे तुम कौन है जीवित हो गया? और तो मैं वहां का बालक था, हमारे माता पिता हमको यज्ञोपवीत दे रहे थे और उसी समय कृष्ण सर्प आकर के विषाक्त ने काटा और मैं मर गया, इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। गांव वालों ने खबर दी, गांव वाले और उसके भाई पिता माता आए, अब तो रोने लगे, चलो घर चलो। उन्होंने कहा जी अब जिसने हमको प्राण दिया वही हमारा माता पिता भाई बंधु सब कुछ, अब नहीं जाएंगे। तब उन्होंने फिर से उसको अपने पास रखा, अब उनकी सेवा करने लगे। तो ये उस वो जो लड़का था मरा हुआ उसका नाम मुरारी था, तो इसलिए उसको मंत्र इत्यादि दिया तो वो सारंग मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये मुरारी कौन है? वही मुरारी महाप्रभु जी के लीला में, मुरारी गुप्त नहीं और मुरारी है, हाँ ये नहीं दूसरे हैं, मुरारी हैं। इस प्रकार से ये विरह की लीला वहां पर हुई। रामचंद्र जी वहां पर आकर के मुस्कुराने लगे, तब ये हुआ। और भी वहां पर है, उसी जगह में महाप्रभु जी श्रीवास आंगन में रहते थे और श्रीवास की भतीजी रासलीला में जाती और महाप्रभु कुछ प्रसाद लेकर के उसको दे देते। बड़ी प्यारी थी, छोटी सी बच्ची, जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चों को स्नेह करते हैं, महाप्रभु दे दिया। अब उसकी शादी वहीं पर हुई और उसके गर्भ से क्या नाम वृंदावन दास ठाकुर हुए। उन्होंने लिखा है ऐ तो परिहारे जो पापी निंदा करे तबे लाठी मारो तास। वो जो यदि नित्यानंद प्रभु की यदि कोई अवज्ञा निंदा करेगा तो उसके सिर पर एक लात जमा दूंगा, जैसे हनुमान जी ने लंका जाए, यही वैष्णव का है। गुरु वैष्णव की जो निंदा करे, इफ एनीवन क्रिटिसाइजिंग माय गुरुदेव ओ देन आई विल किक हिज हेड बाय माय फीट एट वन, और इफ इज क्रिटिसाइजिंग कृष्ण शास्त्र वेद श्रीमद भागवतम आई विल किक हिज आई विल कट हिज टन एंड इफ नॉट देन विथ माय गवर्नमेंट आई विल drive in Ganges and Yamuna. We should be like that. We should be very Guru Nishtha. That if there is no Guru Nishtha, no bhakti. No bhakti. Anyone cannot help him. In whole, even Brahma and Krishna cannot help me. Jasya prasada bhagavat prasada. Jasya prasada nabhati kutu. You should not think that, oh, if I will live up my Gurudev and I will take shelter of Krishna, he may be merciful. But never you should think Krishna will kick him out. So be Guru Nishtha. और भी वहां की बहुत सी लीलाएं हैं। और पीछे समय देख करके पीछे हम लोग कल tomorrow कल हम लोग यहां से भोर 6 बजे जैसे निकल रहे हैं, 6 बजे के करीब हम लोग यहाँ से गोकुल में जाएंगे। सबसे पहले हम रावल में जाएंगे, राधा जी का जन्म स्थल रावल में, और इसके बाद में हम लोग ब्रह्मांड घाट जाएंगे और वहां से जन्म स्थान गोकुल में वहां पर दर्शन करेंगे और फिर वहीं पर हमारा प्रसाद होगा। हाँ वो सब बोलने की जरूरत नहीं है, दोपहर का प्रसाद वहीं हो करके फिर हम लोग यहाँ आएंगे। और परसों होगा यहाँ से हम लोग निकलेंगे जावट नंदगांव बरसाना, बहुत सुंदर स्थान है ना, बरसाना जाएंगे, जावट में जाएंगे, वहां पर कुछ काम चल रहा है और फिर वहां बरसाना नंदगांव, और यदि समय रहा तो कदम्बटे जाएंगे, और नहीं तो नंदगांव बरसाना दर्शन करना ही, क्योंकि जन्म स्थान है, होली कुछ करेगी नहीं वहां पर, होली खत्म हो गई है शायद, हुड़दंग वाली। और यदि होगा तो उसके लिए दर्शन करने जाएंगे, जो एक पिचकारी कोई लगाई दिया तो क्या है, उसके लिए चिंता मत करो। हाँ किंतु एक बात है, केवल आनंद हम ले जा रहे हैं, ये सब बिना पैसे का नहीं ले जा रहे, ये पैसा देना पड़ेगा कुछ, अभी तक मिल करके सब लोगों ने नहीं दिया, अभी तक हम लोगों के पास में 30-35 हजार रुपया केवल आया है, इसमें लगेगा 1 लाख रुपया, अब से समझो बस को ही हमको देना पड़ेगा 40 हजार, और सब तो जो खर्चा है वो अलग, टेंट फेंट लिया है इसके लिए 20 हजार, बस के लिए भी देना पड़ेगा इतना, इसलिए खर्चा है, तो इतना मत दो, थोड़ा थोड़ा देगी और बाकी हम अपने गांठ से देंगे, किंतु दो कुछ कुछ सभी लोग, जो जिसका जितनी हैसियत है, और जो ब्रह्मचारी है वो क्या देंगे, उनके पास नहीं है, किंतु ब्रह्मचारी सन्यासी रुपया वाले हैं तो उनको देना चाहिए। हाँ तुम्हारो समझ गए ना, 10 है 5 है जो कुछ भी है दो, और नहीं कुछ है मत दो, उसके लिए मैं बैठा हूं। हाँ तुम्हारो ओ आफ्टर दैट इट इज लाइक ए रिक्रिएशन और व्हाट इसको माने मजाक एक है रिक्रिएशन बट आई विल गिव यू चांस आफ्टर दैट। तो वी विल गो टुमारो इन मॉर्निंग एट 6 बाय बसेस, वी विल गो टू गोकुल, फर्स्ट वी विल गो टू रावल द बर्थ प्लेस ऑफ राधिका अवर मास्टर मिस्ट्रेस और मिस्ट्रेस, एंड देन वी विल गो टू ब्रह्मांड घाट, एंड देन फ्रॉम ब्रह्मांड घाट वी विल कम टू नंद भवन एंड देयर बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा, बिकॉज वी विल गो टू मायापुर इन द बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु अंतरद्वीप, तो अंतरद्वीप लाइक दिस, नॉट मथुरा, वी हैव फिनिश्ड मथुरा, नाउ वी विल गो टू गोकुल एंड द स्वीट पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, वी विल गो ऑल द प्लेसेस एंड इन द मिड टाइम और सफर फॉर प्रसाद lunch will be in Gokul, Mother Yashoda will cook and make ready for you all, and then next day in the very morning by bus we'll start from here and we will go to Javat, and then we will go to Nandagaon and Barsana, and then from Barsana we will return back. For this, so much money is needed. I cannot pay because I'm like a beggar, nothing. So, you'll have to help me and donate me. I know that there are so many brahmacharis. From then, I don't want anything. But always be careful that a brahmachari or sannyasi who can come from motor car to Vrindavan to here, and he can be in a hotel anywhere and he can make drinking always what? Juice. Water, what? Or bottle rush. Why they cannot give something? I request them to give something that we can make. Altogether we have received only about 30,000 to 40,000. But it requires at least 1 lakh or more than that. So please try to help me. I will help by Harikatha. Oh, very sweet Harikatha. You cannot repay me by money. So this is my last request. Not after that I will not ask you anything. Then what I told, who will translate? You or he? So you should do. But don't do mistake, otherwise I will twist your ears.
Hare Krishna. Hare Krishna, for the kind attention of devotees. So many devotees have requested for initiation. Initiation takes place here 6th of March, 8 a.m. So whoever desire for initiation, they will register their name to Srimad Gaur Maharaj or Vedanath Prabhu. This 4 p.m. over there.
Also, they should announce if there is any candidate for sannyas. They should also come forward that I am ready to take renounce order.
And for male devotees, have to say they are here, and for female, no need to cut any hair. कुछ भक्त लोगों ने हरिनाम दीक्षा के लिए अनुरोध किया है. उन लोगों की दीक्षा 6 तारीख को सुबह 8 बजे होगा. उसके लिए 5 तारीख को शाम को 4 बजे ये तो श्रीमद भगवान महाराज के पास या बजरंग के पास नाम लिखा देंगे. बिना रजिस्टर किया भक्तों को हम लोग इसमें अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि दीक्षा के समय कभी आ जाएंगे दीक्षा नहीं चलेगा, पहले सब नाम लिखाना पड़ेगा.
He should come. আমি গেলে সভাটা ভঙ্গ.
Came with Sri Lakshman Dev and Sita Devi, and came also to Navadvip Dham there, a very divine place full of forest, and there they made one like Bhajan Stali, Ashram Stali, and Lord Ram was living there. One day Lord Ram began to smile very broadly. So Sita Devi asked him again and again, "Oh my Lord, why are you smiling? What is it that amuses you?" So Lord Ram said, "This is Mam Gachi, this place is very dear to me. But I see, in a later date, isn't it? After the 14 years of Vanaprast, when we come back to Ayodhya,
this would all should not come, disturbed.
That time, when we come back to Ayodhya, I will send you to the forest. You will go to the ashram of Valmiki Rishi. And there you will spend your whole time in separation. And I will also return to Ayodhya and become king. And there I will make a golden form of Sita and worship you in separation." So there in Chandrayuga, Lord Ram, he will experience separation from Sita Devi in Ayodhya. And Sita Devi in the ashram of Valmiki, she will experience separation from Lord Ram. So we should know that the pastimes of Bhagavan have two banks. One is Sanyog or Niti. The other one is Viraha or Vipralamba. When people hear of the happiness of meeting with Krishna, some people want that Krishna, Radharani should always be with Krishna, and some people want they should be separate. So Guru Maharaj said, really, nobody wants that Radharani should feel separation from Krishna. Do any of the sakis of Radharani want that she should weep in separation from Krishna? No. But still we should know, if we look at it in a very neutral point of view,